قالت احداهما يا بت استاجره, ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا. اب دیکھیے, پیچھے ہم نے بہن کا کردار دیکھا اور ماں کا دیکھا, یہاں ہم بیٹی کا کردار دیکھ رہے ہیں اور آگے جا کے ہم بیوی کا کردار دیکھیں گے. دعا کیجئے ان چار روپ میں آج کی عورت کامیاب ہو جائے تاکہ دنیا کو خیر دے سکے. کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ کہنے لگی, ابا جان آپ اس کو نوکر رکھ لیجئے. بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. مضبوط کیسے سمجھی؟ کہ اکیلے موسیٰ نے وہ بڑا سا پتھر اٹھا کے کنویں سے ہٹا دیا تھا جس کو کئی لوگ نہ ہٹا سکے. تو اسٹرانگ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کی خوبی ہے کہ وہ اسٹرانگ ہو. یہ نہ ہو کہ چوہا مارنا تو بیگم کو بلا لے اور وہ لال بیگ ہے تو بیگم آئیے ذرا آپ اس کو مار جائیے, چور آ جائے تو مرد سب سے پہلے باتھ روم میں گھس جائے یا بیڈ کے نیچے گھس جائے. تو مردوں کو اسٹرانگ رکھے. باپ کے ہم اپنے مردوں کو کیسے اسٹرانگ کریں, اپنے بیٹوں کو اسٹرانگ کریں. انہوں نے جو بننا تھا بن گئے, لیکن اپنے بچوں کو کانچ کی گڑیاں نہ بنائیں. لڑکوں کو خاص طور پہ اسٹرانگ کریں, بریوری سکھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹوں کو گھڑ سواری سکھاؤ, ان کو نیزہ اندازی سکھاؤ, سوئمنگ سکھاؤ, ان کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ وہ امانت دار ہے. کیسے امانت دار ہے؟ کہ کام کیا پیسے ہی نہیں مانگے, بے ضرر ہیں. دوسری بات ہے کہ ان عورتوں پر نظر ڈالی بھی نہیں. تو گویا کہ اس طرح سے ان کو بتا دیا گیا کہ یہ اچھا شخص ہے. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں. کیا پتا چلا بیٹی کا باپ بھی کسی کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. ہم توبہ کرو, کہیں گے ساری زندگی تانے سنانے, تجھے خود ہی آ کے دے گئے. آج کتنے لڑکیوں والے ہیں جن کے دلوں میں خواہش بھی ہوتی ہے کسی جگہ رشتہ ہونے کی, کیوں نہیں کرتے بات؟ کہ نہیں برا لگتا. کیوں برا لگتا ہے بھائی؟ اسلام تو آپ کو اس میں برا نہیں بناتا. کسی کو کرنا ہوگا تو کر لے گا, نہیں کرے گا تو نہ صحیح. اچھا آپ کہتے ہیں پھر فی زمانہ برا, تو میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا دیتی ہوں. ٹوٹکا تو نہیں ہے, خیر اسلامی چیز ہے. آپ دیکھیے دعا استخارہ ہے نا, ہم اس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبۃ امری. یعنی اب طویل کہنے کی وجہ خلاصہ بتاتی ہوں کہ اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے دین دنیا اور میری معیشت معاشرت میں, تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر, اس سے بہتر لیا. تو آپ میں سے جس کے دل میں اپنی بیٹی یا کسی بھی کسی کے لیے رشتے کی خواہش ہے اور آپ کہہ نہیں پا رہے, آپ اس کی نیت سے استخارہ شروع کر دیں. اسی میں آپ نے اللہ کو کہہ دیا کہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو دوسرا لیا, اور اگر یہ بہتر ہے خود اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا. تو بعض دفعہ حکمت کے ساتھ ہم اللہ سے بھی بہت ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں جو کہ ہمیں دوسری طرح سے مانگنی نہیں آتی. اور باپ نے بیٹی کے نکاح کی شرط کی. اب آپ بتائیے موسیٰ کو اور کیا چاہیے تھا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو. یہاں سے پتہ چلا کہ نکاح کے وقت شرط لگائی جا سکتی ہے لیکن لگانی نہیں چاہیے, کیونکہ جو ہی شرط ٹوٹی نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن باپ کی مجبوری تھی, انہوں نے کہا 8 سال میرے ساتھ رہو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے, میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین, تم ان شاء اللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. یہ ہے نکاح, بیٹی کے باپ اور لڑکے کے بیچ میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا لڑکی لڑکے کا نکاح ہوتا ہے, تو کاٹ دیجئے اس جملے کو. نکاح لڑکی کے باپ اور لڑکے یعنی دولہا گروم اور اس برائڈ کے باپ کے بیچ میں ہوتا ہے. لڑکی کے ساتھ ہوتا ہوتا تو پھر اتنے لمبے چوڑے معاملے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال موسیٰ نے رشتہ قبول کیا, نکاح ہو گیا. ان دونوں مدتوں میں جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر آپ مجھ پر کوئی زیادتی نہ کیجیے. یعنی ٹھیک ہے میں 8 سال آپ کے ساتھ رہوں یا 10 سال رہ لوں, یہ میری مرضی ہے. ہاں جو کچھ قول و اقرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے, کیونکہ اس وقت کوئی گواہ نہیں ملے تو اللہ کو وکیل بنا لیا. اب اس میں دیکھیے کتنی باتیں میرے اور آپ کے لیے, لمبی بات ہو جائے گی, اللہ نہ کرے کہ ہمارا وقت کم ہو جائے. لیکن حقیقت ہے کہ اسلام ایسی ہی شادیوں کا قائل تھا. موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے بھوکے پیاسے خالی ہاتھ, روٹی کپڑا اور مکان تینوں مل گیا, بیوی بھی مل گئی. اللہ سے دعا کیا کی تھی, انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دعا قبول کیسی, باحیا عورت مل گئی. یاد رکھیے آپ اپنے بچوں کے لیے اگر ایسی باحیا لڑکیاں لے کے آتے ہیں جن کے دل میں دین اور اسلام کی محبت ہے, آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لیے خیر کی بات کر دی. کیونکہ جب ایک بچی میں حیا ہوگی نا تو وہ پھر آپ کی نسلوں میں بھی یہ لے کر آئے گی. کس طرح ہم نے دیکھا کہ اپنی ذات کی طرف توجہ دلانے کی بجائے اس نے بات پہ توجہ دی. موسیٰ سے کوئی اس نے راہ و رسم نہیں رکھے, فاصلہ رکھتے ہوئے بات کی. اور آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ تو لڑکیوں کے انداز ایسے دل پھینک ہوتے ہیں کہ شریف مرد گھبرانے لگتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ان سے ہمیں کوئی بچا لے, پزل ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. تو یاد رکھیے حجاب ہو کہ نقاب ہو, دونوں کے بیچ میں حیا مقرر ہے. बदतमीज भी नहीं होना और बहुत ज्यादा फैल भी नहीं जाना। फिर दूसरी बात, आप देखिए कि यहां हमें जो बात पता चली वो क्या है कि इतने आराम से शादी हो गई। आप अपने ऊपर लें, अगर आपकी कोई बेटी है और जो लड़कियां खुद अनमेरिड हैं, जरा वो अपने ऊपर लें। एक लड़का जिस पे कत्ल का इल्जाम है, किसी मुल्क से डिपोर्टेड है, जॉब उसकी कोई नहीं, डिग्री उसके पास कोई नहीं, गाड़ी वो नहीं लेकर आया, बैंक स्लिप उसकी कोई नहीं, कोई जॉब नहीं, क्या देखा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने? आज हम अपनी बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं सिर्फ अपनी लिस्टों को मैच करते हुए, और हम अपने बेटों को गुना पे रहना माइल कर देते हैं, लेकिन हमारी वो लिस्ट नहीं मैच हो रही जो किसी लड़की के अंदर हमने खूबियों की देखनी है। वो परी भी हो, वो औरत भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल? वो हूर भी हो और वो इन लड़की भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल? और वो हो भी 18 साल की और काम वो 40 ईयर्स वाले करे, हाउ इज इट पॉसिबल? नामुमकिन किस्म के हमने ऐसे मेयार बना दिए जिसने आज हमारे बच्चे बच्चियों को सबर पे डाल दिया या गुना पे डाल दिया। दोनों बातों को जाके सोच लें, कितने माँ बाप है जिन्होंने इस तरह के मेयार रखे। और आज भी मैंने देखा है वेस्ट में पलने वाले लड़के और लड़कियां, दे आर वेरी मच रियलिस्टिक। ऐसी लड़कियां वो कहती हैं हमें कोई नहीं चाहिए दौलत, हमारे माँ बाप नहीं करते हमें, ठीक है एक अर्ली स्टेज पे लड़का है उसका कैरियर बंद है, खुद ही आ जाएगी दौलत 4-10 साल में जब जॉब लगेगी, प्रैक्टिस शुरू होगी, अब माँ बाप कहते नहीं दौलत हो। उधर बाप क्या चाहता है, लड़का हो कोई 20-25 साल का, दौलत उसकी मेरे जितनी हो जो 60 साल की उम्र में पूरी हुई। हर एक जानता है कैरियर के शुरू में दिन हाथ तंग होता है। आप में जो वो डॉक्टर्स की बीवी है, आप अपनों को एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए, डॉक्टर्स की इब्तदाई जिंदगी इंतहाई कसम पुरसी की होती है। ऐसी एक सिस्टर की बात याद आती है कि जब शादी हुई उनकी तो वो कहती थी कि हम एक कमरे के फ्लैट में मियां बीवी रहे, बच्ची पैदा हुई तो गम पड़ गया कि इसका दूध कैसे लेंगे, और इस वक्त वो अपने शहर के मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े डॉक्टर होंगे करोड़पति लोगों में से। सब पलट के आ गया, सब्र किया, हो गया। आप शादी के वक्त दौलत भी चाहते हैं, गाड़ी भी चाहते हैं, बंगला भी चाहते हैं, तो फिर वैसे ही लड़के मिलेंगे। फिर आप जब लड़के देखते हैं कि ये सब जरूरी है और शादी जरूरी है, फिर वो इधर उधर से गलत मीन से दौलत कमाएंगे। तो शादियों को आसान करने की जरूरत है। किस तरीके से ये मामला हुआ, आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, इतना डिलेट कर दिया कि अल्लाह की बना। और जब फिर शादियों पर डिस्प्ले होते हैं और आप तो खुशी में करते हैं कि वी हैव दिस सो वी नीड टू डू दिस, तो जिनके पास नहीं होता वो क्या करें? अगली सूरत में हम पढ़ेंगे, सूरत अनकबूत का पूरा टॉपिक ही शो ऑफ है, रियाकारी, दिखावे, शो ऑफ, तबर्रुज, कहां तुम अपने आप को दूसरों के अंदर फिट करते हो। तो आज उम्मत मुस्लिमा को इस पे सोचने की बात है। और फिर इसमें एक और बात पता चली कि घर दामाद भी बनाया जा सकता है लड़की के मियाँ को, कोई बुरी बात नहीं। हम कहते हैं लो यानी लड़की का मियाँ आपके घर में रहा, घर दामाद लव सबको ही पता क्या होता है। हजरत शुएब की मजबूरी थी, बेटा नहीं, अब कल तक मजबूरी में बेटियों से काम कराया, जब दामाद मिल गया, हलाल रिश्ता घर में आ गया, तो कहा भाई आप बकरियां चराएंगे, मैं अब लड़कियों से और काम नहीं कराऊंगा। पता चला किसी मजबूरी में करा लिया, लेकिन जब मजबूरी दूर हुई तो उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि शर्त रखी, और हजरत मूसा भी कितने अच्छे दामाद दिख रहे हैं कि ये नहीं कहा अच्छा एक दफा शादी कर लो फिर पूछूंगा जब दामाद बनूंगा। आज लोग उतना अल्लाह से नहीं डरते जितना दामादों से डरते हैं, अल्लाह की बना, दामाद का नाम सुनकर खौफ आने लगता है। बहू बिचारी ससुराल की खिदमत करे और ससुराल सारा दामाद की खिदमत करे, कितना उलट में आ रहा है। लड़की ससुराल में जाती है तो उसका मुकाम देखिए, और लड़का अपने ससुराल में जाए तो क्या होता है? किसी की लड़की आपके घर में आई तो आप खिदमत कराएं, आपका बेटा ससुराल से हो क्या है तो मुझे बताओ क्या खिदमत की, अच्छी तरह पूछा, तुम्हें रखा नहीं? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें खत्म करने पड़ेंगे। और जरा कोई जाके ससुराल वालों की खिदमत तो कर रहा है, बेचारा लड़का कहेंगे तुम जन मुरीद हो गए, तुम तो ससुराल क्या तो बिक गए, तुम्हें तो कुछ खिला दिया और पिला दिया और जादू चल गया तुम पर, ऐसी बात नहीं है, तुम इलेक्ट्रिशियन हो, तुम उनके प्लम्बर हो, ये भी जैसे आपका बेटा है वैसे आपका दामाद है। याद रखिए इन दोनों रिश्तों में कोई फर्क नहीं होती। अगर माया चाहती हैं कि उनकी बहुएं उनकी खिदमत करें तो उनको अपने बेटों को ये सबक देना चाहिए कि आप भी अपने ससुराल वालों की खिदमत करें अगर उनको जरूरत हो। लेकिन आज जब हमने नबियों का इखलाक छोड़ा तो यकीन करें हमारे घरों का हाल बदल गया। आज हमारे लड़कों का हाल क्या है कि मैके वालों से तो डांट खाते हैं और ससुराल वालों में जाकर डांट देते हैं और गुर्राते हैं कि लोगों को पता नहीं ये नहीं वो। तो बहरहाल इन सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस्लाह फरमा दे, वरना बात नहीं बनेगी। अगली आयतों में आप देखिए मूसा के 10 साल पूरे हो गए, अच्छे दामाद होने के नाते 8 की बजाय 10 साल पूरे कर दिए और अब जाने लगे। यहां फिर कान खोल के सोच लीजिए कि लड़का यानी मर्द अपनी बीवी को जहां चाहे ले जा सकता है, कोई ससुराल वाला ये शर्त नहीं लगा सकता कि आप इधर ही रहेंगे, आप हमारी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। बाज दफा आप अपने एक ही शहर में शादी करते हैं, कुछ जॉब बनती है, 2-4 साल में चली जाती हैं लड़कियां, तो इतनी शर्तें लगाना कि शादी हो ही ना, वे अल्लाह पे ट्रस्ट कीजिए। उनके बाप ने बेटी की शादी की, घर में रखा, 10 साल रखा, लेकिन वो वक्त आ गया, कहा खत्म, अब तो हमें जाना होगा, अब अगला दौर है, तीसरा दौर है मूसा की जिंदगी का। आयत नंबर 29 से, फलम मकदा मूसा लजल, जब मूसा अलैहि सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और वो अपने अहलो याल को लेकर निकल चले, तो तूर की जानिब इनको एक आंख नजर आई। ये वक्त है, देख लीजिए कि मूसा को नबूवत मिल रही है, रिसालत नहीं, नबूवत मिल रही है। अभी तक मूसा एक ऑर्डनरी इंसान थे, मिस्र से निकले थे कत्ल के मुकदमे में, या नोट कीजिए कत्ल तक हो चुका हाथ से, चाहे कत्ले खता था, अल्लाह उसके बाद नबूवत दे रहा। तो आप किसी गुनाह में अगर शिकार हैं तो क्या बड़ी बात है कल अल्लाह आपको कुरान का टीचर लगा दे, कल अल्लाह आपको कुरान के वॉलंटियर बना दे, तो कभी आपके गुनाह या आपकी जिंदगी की कोई स्याही आपको नेकी करने से ना रोके। शैतान का एक बड़ा हाथ होता है, हम होते कहते 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, देखो देखो ये कत्ल करने के बाद अब क्या करें, तो कभी किसी को उसके गुनाह की याद ना दिलाएं। खुद भी गुनाह कर चुके हैं, अल्लाह से क्या, अब अल्लाह मौका दे कि अगली जिंदगी में इन गुनाहों को धो लूं। फिर दूसरी बात देखिए कि मूसा चाहते तो 8 साल बाद भी आ जाते, लेकिन उन्होंने एहसान का मामला किया 10 का, उसका फायदा आपको पता क्या हुआ, अगर 8 साल बाद वापस चले जाते मिस्र में तो जेल में होते, क्योंकि अभी मुकदमे की मुद्दत थी। 10 साल बाद गए तो 10 साल में मिस्र के कानून के मुताबिक कत्ल के मुकदमे डिलीट कर दिए जाते थे, क्या मुजरिम को छोड़ दो। एहसान किसी पे किया, ससुराल पे, फायदा अपने आप को हुआ। तो याद रखिए नेकी पलट के आती है, आज आप किसी के साथ नेकी करेंगे आपको फायदा होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी बीवी और 7 बच्चे उनको लेकर वापस जा रहे हैं कि आई नीड टू गो बैक। तो माँ बाप इतनी सख्तियां ना करें अपने बच्चों पे और अपनी बेटियों के, इतने लाड ना देखें कि ये इधर नहीं जा सकते, ये उधर नहीं जा सकते। और ये भी पता चला कि वक्त एक सा नहीं रहता, हालात बदल जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले और दूर से आग दिखी, इसको पढ़ते हैं फिर देखेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहले याल को लेकर निकल चले, तो तूर की जानिब इनको एक आग नजर आई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं, या उस आग से कोई अंगारा ही ले आऊं, कोई अंगारा ही उठाकर लाऊं जिससे तुम ताप सको। कौन है शोहर? कवाम है, एक जिम्मेदार शोहर अपने घर वालों की जरूरियात का एहतमाम मर्द करता है। मूसा ने बीवी को नहीं कहा कि मैं जरा यहां बैठता हूं, जरा आप जाके थोड़े से कोयले ले आइए और मुझे से किए। तो बीवियों को भी इतना बेवकूफ नहीं बनना चाहिए कि मर्दों की इस तरह की बातें मान ले, जरूरत की बात और होती है, लेकिन उनको रिलैक्स नहीं कर देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या पता चला कि मूसा अपने बीवी बच्चों के साथ थे जब नबूवत मिली। अल्लाह के दीन के काम करने के लिए खुदा ना खास्ता हम ये कभी इंतजार ना करें कि हमारे घर टूटे, अकेले हों, फिर अल्लाह का काम करें, और बच्चे हमें छोड़ छाड़ के चले जाएं तो हम रोते हुए आंसू पोंछते हुए किसी मदरसे में आके बैठ जाएं। इन्हीं बीवियों और इन्हीं शोहरों और इन्हीं बच्चों के साथ दीन के काम करने हैं, इन्हीं को गोदों में लेके आना है, इन्हीं बड़ों को साथ लाना है। और इस तरह से बात है, आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने जा रहे हैं, हिदायत देने वाले बनकर आ रहे हैं। बस जब इंसान कुछ लेने आता है और जब उस कमरे से निकलता है ना, तो देने वाला बन चुका होता है। जैसे आज आप में से बहुत सारे कुरान लेने आए हैं ना, दौरे कुरान के लिए आए, आप लेने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस काम पे जमगे तो कुछ सालों में आप देने वाले बन के पूरे शहर में फैल जाएंगे। तो हमेशा कह के अल्लाह मुझे देने वाला बना, लेकिन देने से पहले लेना लाजमी है। जब कुरान सीखे बगैर, पूरी तरह सारे रूल्स और रेगुलेशन से गुजरे बगैर हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं और पढ़ाना और कच्चा पक्का इल्म देते हैं, अल्लाह की पनाह। आज उम्मत मुस्लिम का एक ये भी बहुत बड़ा नासूर है, वो लोग दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं जिनको खुद अभी हिदायत की जरूरत है, वो लोग दीन सिखा रहे हैं जिनको अभी खुद सीखने की जरूरत है। कच्चे पक्के इल्म से कभी खैर नहीं फैलती। मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल में वहां पूरी तरबियत पा चुके थे कि जो नबूवत के कामों में मुआविन थी उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है। आगे सरेरा, जैसे आप भी किसी के कहने पर सरेरा आज आगे, आपको नहीं पता आज का आपका आना आपकी जिंदगी का रुख चेंज करने का दिन बन गया। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से निकले, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी, कैसे अगला मंजर देखिएगा। जब वहां पर पहुंचे तो वादी के दाएं किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहान वालों का मालिक, और हुक्म दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी को, यूं ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खाती भी दिखती है, तो पीठ फेर कर भागे और उन्होंने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद व मूसा, पलट और खौफ न करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। अपना हाथ गिरेबान में डालो और चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भेंच लीजिए। ये दो निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए। वो बड़े ही नाफरमान लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, क्या पता चला 10 साल हो गए लेकिन अभी तक उस गुनाह या उस कत्ल के खौफ से नहीं निकल सके। डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जुबान आवर है, और वो उसको मुझसे ज्यादा जुबान आवर है, यानी अच्छी बात कर सकते हैं। उन्हें मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दीजिए ताकि वो मेरी ताईद करें। मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे छुटलाएंगे। फरमाया, हम तेरे भाई के जरिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सल्तनत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे, और हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरोकारों का ही होगा। यहाँ पे अगला मंजर पूरा हुआ। यहाँ फिर बहुत सारी बातें सीखने की। पहली बात देखिए कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब चुना दीन की खिदमत करने के लिए, तो माजी की कुछ गलतियां याद आ गईं। तो कहने लगे अल्लाह ताला, मैं कैसे उनको जाके बताऊं, मेरे हाथों से तो एक कत्ल हो गया। तो अल्लाह ने कहा, डोंट वरी। क्या पता चला कि दीन की खिदमत करने वालों को गिल्ट में नहीं पड़ना कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हम गलत तो काम कर चुके, बल्कि मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से बताऊंगी कि जिसने जितनी गुनाहों की जिंदगी गुजारी होती है ना, फिर वो उतना दीन का काम ज्यादा दिल से करते हैं। गुनाह का गिल्ट होता है, उस गिल्ट से आप समझते हैं कि दूसरों के क्या जज्बात हैं। मसा आप देखिए, एक सिस्टर है जो दीनदार घर में पैदा हुई, किसी आलिम के घर में, अल्लाह ने किसी बहुत नेक इंसान की बेटी बनाया, ना गुनाह चखा, ना गाने सुने, ना फिल्में देखी, ना नाच गाने किए, जो भी फी जमाना खराबियां थी उन्होंने तो की नहीं। कल वो तबलीग करने बैठ गई, क्या वो लोगों को के जज्बात समझ सकती हैं? गाना सुन के दिल को अच्छा कितना लगता है, और वो म्यूजिक सुन के जो पांव थरकते हैं और जो कानों में बातें आती हैं, उनको पता है कि म्यूजिक सुनने वालों के जज्बात क्या है? वो कभी उस तरह बात ही नहीं कर सकेंगी, वो कभी भी ह्यूमन लेवल पे आके उस तरह की बात नहीं करेंगी। इसके बरक्स आप सोचिए, कोई दुनिया का मशहूर शख्स जो गुनाहों में जिंदगी गुजार गया, जिसको पता है जज्बे क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, कहां बंदा फिसलता है, कहां जज्बा एक मिनट के लिए जज्बात के अंदर आए और गुनाह करके चले गए, अब जब उसको दूसरों को बात करनी पड़ेगी, वो रोएगा कि नहीं रोएगा? उसकी तो आंखों से आंसू निकलेंगे, उसको अपना वक्त याद आएगा। तो याद रखिए, बाज दफा अल्लाह हमसे बड़े बड़े गुनाह इसलिए कराता है कि हम उसके बाद बड़े बड़े काम नेकियों के कर सके। तो डोंट बी गिल्टी। गिल्ट तौबा की सूरत में हो, नेकियों में बढ़ाएं, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर नेकियों से ना रुके। शैतान गिल्ट डालता है, छोड़ो तुम्हारी कहां कबूल होगी, तुम तो माजी में इतना बुरा कर चुकी, तुम तो ये थी वो थी। तो याद रखिए, अल्लाह ने चुन लिया। मूसा में क्या खूबी थी, क्या मूसा के पास डिग्री थी? तड़प थी, सच था। जिस बंदे में सच होता है अल्लाह उसको जरूर चुनता है। और आप यहां बैठ के ये दुआएं मांग के जाएं अगले 10 पारों में कि अल्लाह मुझे चुन ले, अल्लाह मुझसे कुछ करा ले, अल्लाह अगर मेरे में कोई टैलेंट है तो उसको उभार ले। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ, ये दुआ आपकी कुरान पढ़ते हुए जरूर कबूल होगी, बाकियों का मुझे नहीं पता। अल्लाह जब चाहे आपकी कोई दुख सुख सुन ले, बीमारियां सुन दूर करे, लेकिन कुरान पढ़ने के दौरान अपनी हिदायत के साथ दूसरों की हिदायत का जरिया बनने की दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, वल्लाही। तो कभी थोड़ा बहुत ये दीन का काम जो होता है उसको देखती हूँ, तो मुझे अपना वो वक्त याद आ जाता है जब मैं पहली दफा कुरान सीखने बैठी, या जो मेरे इब्तदाई सफर थे, मेरी टीचर पढ़ा रही होती थी और मेरा दिमाग कहीं और होता था, वल्लाही। ना मेरी दुनिया में उस वक्त ये सारा कुछ था जो इस वक्त मेरे पास है। एक आम औरत, एक लड़की जिसको आप किसी भी आम माशरे की देखें, लेकिन मैं हमेशा कहती थी, अल्लाह इनसे ये काम हो रहा है तो मेरे से भी ले, अल्लाह ये पढ़ा सकती है तो मैं भी पढ़ाऊं, अल्लाह ये सिखा सकती है तो मैं भी सिखाऊं, इनकी जुबान पे कुरान आम है तो मेरी पे कर दे, यही सोचती रहती थी पूरा वक्त। ख्वाबों में, ख्यालों में, तस्वुरात में थी कि अल्लाह कुछ करा ले, और फिर दुआएं निकलती हैं। कभी कभी तो मुझे कोई ऐसा नेकी का मौका जब सामने आता है तो आंसू निकल आते हैं, वो क्लासरूम याद आ जाता है जहां बैठ के वो तड़पी थी कि अल्लाह तूने इस तरह सुनी थी उस वक्त, मुझे तो ख्याल भी नहीं आया। तो कभी इन वक्तों को जाया ना करें, ये वक्त खुद को कैश करने का। या तो आप अल्लाह के रास्ते के बुलाने वाले बन जाएं, या नफ्स के रास्ते के। आगे इंशाल्लाह आप जो 26वां 27वां 4 आखिरी पारे पढ़ेंगे, वो तो फिर आपको आपका अपना नहीं रहने देगा। उसको पढ़ने के दौरान या तो फिर आप मन अंसारी अल्लाह बन जाते हैं, या हिजबुल्लाह में शामिल होंगे, या हिजबु शैतान में। तो ये तो मेरी बात है, मिसाल देती हूँ कि आपको जॉब ऑफर होती है सदर ओबामा के ऑफिस में, और एक तरफ आपको जॉब ऑफर होती है इस शहर के किसी छोटे से क्लीनिंग डिपार्टमेंट में। कौन अकलमंद है किसको चूज करें? पैसे को छोड़ दीजिए, माल को छोड़ दीजिए, प्रोटोकॉल ही बहुत बड़ा है। चले गुलाम है अंग्रेजों के, हैं तो गुलाम अंग्रेजों के ना, यही बड़ी बात है हमारे लिए। हम तो इस पे बड़े खुश हैं कि हम बड़ों की जॉब करें। तो जिसको अल्लाह की जॉब मिल जाए, जिसके पास दो चीजों में तकाबुल हो, वो इसको चूज करे कि अल्लाह मैं तेरे काम करूं तो मेरे कर, तो फिर आप बताइए कि वो एक मिनट का बस फैसला होता है। और इस पे कोई आपको मजबूर नहीं करेगा, ये सिर्फ वो काम करेगा जो खुद करे। उस दिन यंग बच्चियों के साथ क्लास में थी, किसी प्रोग्राम में थे, तो मैंने उन्हें बाद में कहा कि बेटा आप में से किसी की अम्मी ने साइन नहीं करने आपके इस फॉर्म पे, आप खुद करें। जिनकी माएं करती हैं वो हर हफ्ते रो रो के लाती हैं उनको, चलो जाइए, चलो चलते हैं, चलो तुम्हारी मैंने कमिटमेंट की। और जो बच्चियां खुद करती हैं, मैं देखती हूँ वो जॉब से थकी हारी आती हैं, सीधा स्कूल आती हैं। वो सारी रात की जॉब करके आती हैं, वो स्कूल आती हैं, वो उस -20s में आती हैं, वो स्कूल में आती। क्यों? कि ये उनके अपने दिल की अर्ज थी। तो आइए हम सब अपने लिए दुआ करें। देखिए कब्र में तो मैंने ही जाना है, मेरी माँ ने थोड़ी जाना है। अगर मुझे किसी गुनाह की वजह से दुनिया में तकलीफ आनी है तो मैंने ही भुगतनी है, आपने थोड़ी भुगतनी है। तो क्यों ना हम यहाँ बैठ के वो फैसले करें, वो दुआएं करें, वो तमन्नाएं करें कि मूसा की तरह अल्लाह हमें भी चुन ले। दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे भी चुन ले, अल्लाह मुझे भी दूसरों की हिदायत का जरिया बना, लोग मेरे लिए दुआएं करें, लोगों की दीन का जरिया बनूं। ये नहीं कि मैं खुद नेक बनूं, अल्लाह मुझे दूसरों की नेकी की बात डाल दे।